भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत् मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर 17। तैर्वञ्चितोऽहं सकुलं समाविशन् नरो चयनशीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सुनिवृतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधिः तै उनके द्वारा वंचकों तथा कथित योगियों स्वामियों अवतारों तथा गुरुओं द्वारा वंचितः ठगा जाकर हंसकुलम परमहंसों या भक्तों की संगति समाविशन संपर्क करके अरोचयन संतुष्ट ना रहकर शीलम शील आचार उपैति पास जाता है वानरान बंदरों को जो दुष्चरित्र कामी पुरुष तुल्य है। तत् इंद्रिय सुख प्राप्त होने से तत् जातिरासेन ऐसे कामी पुरुषों के संग में विषय तृप्ति द्वारा सुनिवृत्त इंद्रिय इंद्रिय सुख प्राप्त होने से अत्यधिक संतुष्ट परस्पर उद्विक्षण एक दूसरे का मुख देख देख कर विस्मृता भूला हुआ अवधि ही जीवन का अंत। अनुवाद। संसार रूपी जंगल में तथा कथित योगियों स्वामियों तथा अवतारों से ठगा जाकर जीवात्मा उनकी संगति छोड़कर असली भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह सद्गुरु या परम भक्त के उपदेशों का पालन नहीं कर पाता है। अतः वह उनकी संगति छोड़कर पुनः बंदरों की संगति में वापस आ जाता है, जो मात्र इंद्रिय तृप्ति तथा स्त्रियों में रुचि रखते हैं। वह इन विषयी जनों की संगति में रहकर तथा काम और मद्यपान में लगा रहकर तुष्ट हो लेता है। इस तरह वह काम और मद्य सेवन से अपना जीवन नष्ट कर देता है। वह अन्य विषयी जनों के मुखों को देख देख कर भूला रहता है और मृत्यु निकट आ जाती है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की। कभी कभी मूढ़ व्यक्ति कुसंगति से उब कर भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति में आता है और गुरु से दीक्षा लेता है। वह गुरु के बताए विधि विधानों का पालन करने का यत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश उनका पालन नहीं कर पाता है, फलतः वह भक्तों का संग छोड़कर उन दुमकटे लोगों बंदरों के साथ करता है जो संभोग तथा मद्यपान में ही रुचि रखते हैं। जो तथाकथित आत्मवादी है उनकी तुलना बंदरों से की गई है। बाहर से बंदर साधुओं से मिलता जुलता है क्योंकि वे जंगलों में नंगे रहते हैं, फल खाते हैं, किंतु उनकी एकमात्र आकांक्षा होती है अनेक पत्नियां बनाकर विषयी जीवन बिताना। कभी कभी तथाकथित आध्यात्मवादी आध्यात्मिक जीवन की खोज के बहाने कृष्ण भावना भावित भक्तों के साथ करना चाहते हैं, किंतु वे न तो विधि विधानों का पालन कर पाते हैं न आध्यात्मिक जीवन के पथ का ही अनुसरण करते हैं। फलतः वे भक्तों का साथ छोड़कर विषयी पुरुषों का साथ करते हैं जिनकी तुलना बंदरों से की गई है। वह पुनः विषय भोग तथा मद्यपान चालू कर देते हैं और एक दूसरे के मुख को देखते हुए संतुष्ट प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से वे मृत्यु आने तक अपने जीवन यों ही बिताते रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतः राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुर्भ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यत्य द्विशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तैर्वञ्चितोऽहं सकुलं समाविशन् नरोचयन् शीलमुपैति वानरन् तज्जातिरासेन सुनिर्वितेन्द्रियः परस्परे परस्परोद्विक्षण विस्मृतावधिः। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तजनों के चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की कृपा से ही कुछ मैं भगवान के विषय में कुछ बोलने के प्रयास करूँगा। तो हम जड़ भरत जी के प्रसंग सुनते आ रहे हैं, काफ़ी दिन हो गया। तो इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंदे के 13 अध्याय में भवाटवी के विषय में वर्णन हुआ है। भवाटवी कहते हैं जिसके संसार को जंगल से उदाहरण दिया गया है, जिसमें जीव जाकर के उलझ जाता है, संसार रूपी जंगल में जाकर के उलझ जाता है। मैं इस अध्याय का थोड़ा सा पहले से आपको वर्णन करूंगा। और उस जंगल में कौन कौन है, ये संसार रूपी जंगल वास्तव में बहुत दुखद जगह है। यहां पर सुख है ही नहीं, वास्तविक सुख आनंद है नहीं यहां पर। तो यह जंगल में पहले आप लोग सुनते आ रहे हैं, छह डाकू है जो हमेशा लुटते रहते हैं। वह इंद्रिय है, मन भी है, इसीलिए उसको छह डाकू बोला गया है। और इसमें श्याल, भेड़िया और सिंह उदाहरण दिया गया है, श्याल, भेड़िया और सिंह। और ये कौन है, वास्तव में पत्नी है, संतान है और परिवारजन, परिजन, ये सब, ये इस घर के मुखिया का रक्तपान करते रहते हैं। रक्तपान कहते हैं, जैसे थोड़ी अलग भाषा में बोलते, खून चूसते रहते हैं इस संसार रूपे। हम किस किसके साथ रहते हैं, वैसे परिवार के साथ, समाज के साथ, है कि नहीं, अपने पुत्रों के साथ, परिजनों के साथ, जो हमें अच्छा लगते हैं उनके साथ रहते हैं। लेकिन इस अध्याय में जड़ भरत कहते हैं, ये सारे परिजन प्रत्येक क्षण हमारी रक्त पान करते रहते हैं और ये सब मिल करके हमारी शक्ति का शोषण भी करते हैं। और इस संसार में आकर्षित वस्तु बहुत है, इस संसार तो आकर्षण है ही, इसमें समाज है, मित्र है, प्रेम है और परिवार है, यह आकर्षित करता है। लोग अधिकतर बोलते हैं ना, हम इस बड़े कुल में जन्म हुआ है, हम इस समाज में, हम इस समाज से आए हुए हैं, हमें देखो, हमें लोग कितना प्रेम करते हैं। हम जब ही हम परिचय देते हैं अपना, तो इस संसार में प्राय देखा जाता है, तो ये शरीर से संबंध होकर के हम परिचय देते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं ठलाना हूँ इत्यादि, तो इससे बहुत गौरव से हम परिचय देते हैं। लेकिन यहाँ पर जड़ भरत जी कहते हैं, इन्हीं लोग, यही लोग एक तो इनकी रक्तपान करते हैं और इन हमारी शक्ति का शोषण करते हैं। और ये संसार में आकर्षित बहुत सारे जगह है, इसमें तादाकार हो जाता है और ये जीव बार बार अपने रास्ता भूल जाता है, कहां जाना है कुछ पता नहीं रहता है इसको, कहां जाना है, क्या करना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा सही नहीं है, इसमें बार बार ये रास्ता भूल जाता है। और इनके पास इतना अनेक कामनाओं का शिकार भी हो जाता है ये जीव, ये मनुष्य इस संसार में जब आता है तो नाना प्रकार की कामनाओं से शिकार बन जाता है ये। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के परिश्रम करता है कि नहीं, कष्ट उठाता है, रूपा जी तो बोलते गधे जैसे परिश्रम करता है, उसके बाद भी उसको संतुष्ट मिलता है, सुख मिलता है, नहीं मिलता है। ये इस संसार में प्रत्येक योनि का यही हाल है। हम लगभग सुनते आते हैं, ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कितना सुंदर कहा इसमें, और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। और क्या होता है कि सुख दुख के कारण हम हमेशा दुख उठाते हैं, दुख से दुखी होता है, सुख से हम कुछ समय के लिए हम सुख महसूस करते हैं। वास्तव में संसार में सुख होता क्या है, सुख नहीं होता है। जब मान लीजिए हमारे ऊपर कुछ कर्जा है, कर्ज है, किसी से हमने 5 लाख रुपया उधार लिया है, जिस दिन आप उस 5 लाख कर्ज को आप चुका दोगे तो आपको लगेगा क्या, मैं सुखी हूं कुछ समय के लिए, अरे बोझ तो उतर गया। लेकिन वो बोझ डाला किसने, किसने डाला, हमने ही तो लिया पैसे किसी से उधार, नहीं, वास्तव में सुख कहीं से सुख नहीं है, हमने ही लिया कर्जा और जब हम चुका देते तो हमें ऐसे लगता है कि अरे मैं तो सुखी हो गया, बोझ उतर गया। वास्तव में इसमें सुख है ही नहीं, कहाँ से सुख है। तो यहाँ पे यही उदाहरण देते हैं कि सुख दुख के कारण वो बड़ा कष्ट उठाता है। इस अध्याय में ध्यान रखना चाहिए, भक्तों के, साधु संतों के, महात्माओं के विषय में वर्णन नहीं किया जा रहा है। इसमें वर्णन किया जा रहा है विषय कामी पुरुष के बारे में, जो केवल संसार में आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लिप्त रहता है, हमेशा इसी में रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। और कभी क्या होता है कि संसार में सांप रूपी निद्रा, और इसमें निद्रा को जहां हम सोते हैं ना, सांप से उदाहरण दिया गया है, वो हमें डसती रहती है प्रत्येक क्षण। उदाहरण है जो भक्त नहीं है, जो अभक्त लोग है, अब जानते हैं सुबह उठना कितना कठिन होता है, नहीं होता है। 3 बजे उठो, फिर स्नान करो इत्यादि, फिर मंगल आरती आओ। और जो भक्त नहीं है, जो कामी पुरुष है, आप उनको जाकर के बोलिए 3 बजे उठो, उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा, क्योंकि निद्रा रूपी सांप लगभग हमें डसता रहता है। कई लोगों से तो हमने सुना है 24 घंटे में 10 घंटा से अधिक तो वो सोते रहते हैं, सो करके बिता देते। कोई कोई लोग तो 12 घंटे भी सोते हैं। अर्थात हमारे जीवन में मान लीजिए यदि हम 100 साल जिएंगे तो लगभग 40-50 साल तो हम सो करके ही बिता देते हैं, निद्रा में हमारी चली जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि सांप रूपी निद्रा प्रत्येक क्षण उसको डसती रहती है, प्रहार करता है। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं किम कर्तव्य इति विमूढ़। किम कर्तव्य कहते हैं, किम कर्तव्य, क्या करना चाहिए, भूल जाता है। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहां से आया हूं, ये 3 प्रकार के जो क्लेश क्यों मिल रहा है मुझे, मुझे क्यों वृद्ध होना पड़ता है कि नहीं, नाना प्रकार के जो रोग क्यों मुझे ग्रस्त करता है, ऐसे किम कर्तव्यम इति विमूढ़। रूपा जी बोलते हैं मूढ़ा तो मूढ़ व्यक्ति तो है ही, मूर्ख तो है ही, और क्या करना चाहिए ये भी भूल जाता है। मनुष्य योनि तो मिल गया है, लेकिन मनुष्य योनि मिलने के बाद भी इस मनुष्य योनि का वास्तविक प्रयोजन क्या है उसको भूल जाता है वो। इसीलिए कहते किम कर्तव्यम इति विमूढ़। और इस अध्याय में ये विशेष करके ये श्लोक में ये भी दर्शाता है कि वो किस तरह से अलग अलग विषय कामनियों की संगति में चला जाता है। और फिर आगे कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ करके या अपने पति को छोड़ करके अन्य से प्रेम करने के लिए प्रयास करता है। ये विषय कामी पुरुष के विषय में चर्चा हो रही है, तो वो उससे क्या होता है, दुखी उठाता है, वो दुखी हो जाता है। प्रेम मिलने पर थोड़ा बहुत सुख हो जाता है, ना मिलने पर क्या होता है, दुखी हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है इसमें। और उनके शरीर में, इस जो विषय कामी पुरुष के शरीर में अनेक प्रकार के रोग, शोक इत्यादि क्या करते हैं, आक्रमण करता रहता है। कभी गर्मी हुआ, कभी सर्दी हुआ, है ना, अभी गर्मी का मौसम तो चल रहा है। इस गर्मी से प्रतिकार करने के लिए हम क्या करते हैं, एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, केवल प्रतिकार करने के लिए प्रतिकार करते हैं, इससे गर्मी से कम ना जले, गर्मी ना लगे, है ये, इस तरह के नाना प्रकार के प्रयास करता है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीव, यह कामी पुरुष वास्तव में काम तो करता है सुखी होने के लिए, कि मुझे कहीं से भी सुख मिल जाए, और वो उस सुख के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर करता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, प्रयास करता है, काम ढूंढता है, कामनाओं की पूर्ति करने के प्रयास करता है। लेकिन उसका कामना पूरा होता है, नहीं होता है। प्राय हम लोग देखते हैं आजकल तो फैशन ही हो गया, काम करने के लिए भारत में नहीं रहना, अमेरिका चले जाओ, है ना, वहां पे पैसे अधिक मिलता है। तो हम यही सुनते यही जानते तो क्या करते, एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान जाता है किसके लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। और वहां जाकर के उनको पूछो कि भाई तुम सुखी हो, तो क्या बोलते हैं, मैं सुखी नहीं हूं। वहां तो खाने के समय भी नहीं है, धन तो है लेकिन खाने के समय नहीं है। स्थानांतर कर करके वो प्रयास करता रहता है, घूमता रहता है, भटकता रहता है, और इतना भटकता रहता है, इतना कष्ट उठाता है माया से मोहग्रस्त हो करके, भूल जाता है कि मुझे एक दिन मरना भी है। ये अंतिम चरण है, ये इतना परिवार के पीछे इतना भागता है, समाज को संतुष्ट करने के लिए, अपने परिवार जन को संतुष्ट करने के लिए, अपनी कामनाओं की इच्छा पूरा करने के लिए इतना भागा दौड़ी करता है, इतने इसमें इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि भूल जाता है कि मेरी मृत्यु एक दिन आएगी, मुझे एक दिन मरना पड़ेगा, वो भी भूल जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रकार वो भगवान से अपना संबंध, वास्तविक मेरा भगवान से क्या संबंध है, उसको भूल जाता है। ये तो सबसे बड़ी भूलने की बीमारी है उसके। इस पूरी अध्याय में इसी का वर्णन हुआ है। इसको कहते भवाटवी, इस संसार रूपी जंगल में इस विषय पुरुष किस तरह से फंसा हुआ है, किस तरह से जकड़ा हुआ है, इसमें निकलना भी चाहे तभी भी मुश्किल है इसके लिए। हाँ, हम पुरुषोत्तम महीना में हम प्राय श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के हम श्लोक उच्चारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहा गीता में, ओम ऊर्ध मूल मद साखम आश्वस्तम प्राहुरभ्यम छंदांश यश प्रणानी यस्तम वेद स वेदविद। फिर कहते अदश्चोदम प्रसिद्धास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल अदश्च मूलानि अनुसंततानि कर्माणि बंधेनि मनुष्य लोके है। कर्माणि बंधेनि, कर्म से बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार को एक वृक्ष से उदाहरण देते हैं, लेकिन इस संसार में हम देखते हैं संसार में वृक्ष की जड़ कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है ना, और जो उसके हांगाए प्रशाखाएं कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होती है। लेकिन इसमें इस अध्याय में बताया गया है जड़ ऊपर की तरफ है और जो और शाखाएं नीचे की तरफ लटक रही है। तो इसमें भी इस अध्याय में भी श्री जड़ भरत जी ने महाराज रहुगण को किस तरह से संसार में कामी पुरुष पड़ता है, किस तरह से वो दुखी होता है, किस तरह से परिवारजन और अपनी कामनाओं की इच्छा पूरी करने के लिए मृत्यु को भी भूल जाता है, किस तरह से अपना संबंध जो भगवान के पास वास्तविक संबंध उसका है उसको भी भूल जाता है, इसके बारे में इस विषय में वर्णन किया गया है। तो इसकी स्पष्टीकरण अगले अध्याय में जाकर के वो बोलेंगे। तो यहाँ पे कहते तैर वंचितो हंस कुलम समाविशन। तैर यहाँ पे कहते तैर बकरादिभिः वंचितः विश्वासेन तान भजन अपि रक्षायां तेषां सामर्थ भावः। कहते कि तै, प्रभुपाद जी कहते पाखंडियों से, संसार में हम देखते हैं लोग प्राय भटकते रहते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग तो श्री कृष्ण भावना अमृत संघ में जुड़े हुए हैं, कृष्ण कृपामूर्ति प्रभुपाद जी की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। एक बार यदि कृष्ण भावन अमृत में कोई आ जाता है तो उसको दूसरे दूसरे संप्रदाय हो या दूसरे दूसरे अलग अलग लोगों की ठग में हम नहीं आते हैं, हमें लगभग लोग ठग नहीं सकता है कि नहीं। संसार में कितने लोग ठगे जा रहे हैं, कौन ठगता है इनको, यहां पे यही कहते तेर वंचितो हो। ते ही कहते हैं, ते ही मतलब कौन कौन है उसमें, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, जो स्वयं को भगवान बोलते हैं, जो स्वयं को बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि बताते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य होता है कि जनता को बेवकूफ बनाना, जनता को ठगना। कई बार हमने ऐसे सुनने में आया कि कई लोग तो दावा करते हैं कि हम आपको 50 दिन में भगवान के दर्शन करा देंगे। अरे क्या दर्शन कराएगा वो, स्वयं तो शरीर से ऊपर उठा नहीं तो भगवान के दर्शन कहां से कराएगा वो। मजे की बात तो ये है कि ऐसे लोग भी जाकर के, ऐसे लोगों से जाकर फंसते हैं लोग भी, मानते हैं अच्छा 50 लाख रुपए दो हम आपको भगवान के दर्शन करा देंगे, दे भी देते पैसे, कौन ठगता है संसार में? हम ठगने के लिए तैयार है, इसीलिए ठगने वाले भी है संसार में। दूसरे को दोष नहीं दे सकते। जब ठगना वाला तैयार है तो वो ठगने वाले को तो कम थोड़ी ना संसार। इसीलिए अधिकतर लोग मायावादी बोलते हैं कि भगवान भगवान के स्वरूप नहीं है, है कि नहीं? भगवान कोई है नहीं, हम ब्रह्मोस्मि, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, सब ब्रह्म है। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठगते हैं। यहाँ पे इसी का अगर तैर वंचित है, इन लोगों से वो उग जाता है ये जीव। इस संसार में मनुष्य इतना ठगता है, इतना ठगा जाता है, कहीं भी जाते तो ठग ही मिलता है उसको। आप देखते हैं प्राय कृष्ण भावना मृत में आने से पहले, प्रभुपाद जी से जोड़ने से पहले, हम भी कई जगह ठग ठग करके यहाँ पे आके पहुंचे हैं, ठोकर खा खा के यहाँ पे पहुंचे हैं, नहीं? क्योंकि वास्तविक रास्ता जो शिला प्रभुपाद जी ने बताया है, ऐसे मार्ग किसी ने नहीं बताया। इसमें ठग है ही नहीं, इसमें भगवत प्राप्ति का पूरा रास्ता है। इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने का पूरी की पूरी रास्ता है। प्रभुपाद जी ने केवल बताया है, लेकिन दूसरे लोग ठगते हैं। तैर वंचित हो, जब ऐसे ठगा जाता है बार 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 उग जाता है, तब जाकर के हम सकुलम समाविशत। तो आचार्य लोग बोलते हैं हम सकुलम मतलब ब्राह्मण कुल में वैष्णव भक्तों की संगति के खोज में चला जाता है। चलो ये महात्मा के पास चला गया, इसने भी ठग लिया, पैसे कितने ले गए, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं ना, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार से कैसे छुटकारा पाना चाहिए, कुछ भी नहीं बताया। केवल आहार निद्रा भय मैथुन में रहो, कुछ भी करो, पैसे देते रहो महीना मारे, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे लोगों से ठगे जाने के बाद बार बार जब ठगा जाता है, तब वो जाकर के कुछ ब्राह्मण और वैष्णव और भक्तों की संगति में आने का प्रयास करता है। और होता क्या है कि नरो चयन शीलम उपेते ही। होता क्या है, हम अपना भी अनुभव है कि जब वैष्णव ब्राह्मण की संगति भक्तों की संगति में आना चाहता है, तो होता क्या है कि इसमें इसको रुचि नहीं होती है। क्यों? ब्राह्मण कुल में जाएगा तो उपनयन संस्कार आदि होते हैं, है कि नहीं? शुद्ध होना पड़ता है, एक दिन में 3 बार तो स्नान करनी पड़ती है, गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, कितने सारे नियमों की पालन करना पड़ता है उसको। तो ये सब देख करके क्या लगता है उसको, नरोचयन ना ना ना। हम जब कृष्ण भावना भावित में हम बोलते हैं, प्रचार करते हैं प्राय बाहर में, तो हम 4 नियम पालन करने के लिए बोलते हैं पहले, है कि नहीं? मांस मंस नहीं खाना, कभी हम बोलते हैं कि प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि चाय नहीं पी सकते हैं, महाराज ये नहीं हो सकता, और भले कुछ भी कर ले लेकिन चाय तो पियेंगे ही पियेंगे, चाय के बिना हम नहीं रह सकते। यही है, भक्तों के संगति में ब्राह्मणों के संगति में आने के प्रयास तो करता है, लेकिन इसमें कठिनाई है। कठिनाई क्या है? बहुत सारे नियम पालन करनी पड़ती है, बहुत सारे चीजें आपको करनी पड़ती है। जैसे हम इस्कॉन में आप देखिए, सुबह से हम उठते हैं 3:30 बजे, स्नान आदि कर करके मंगल आरती में हम शामिल होते हैं, उसके बाद तुलसी आरती होता है, उसके बाद भक्तों के साथ हम बैठ करके जप करते हैं, उसके बाद गुरु पूजा होता है, उसके बाद हम यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं। और ये सब विषयी पुरुष को क्या होता है, अरोचयन, रुचि नहीं होती इसमें। आप देखते हैं हम कितना प्रयास करते, कभी कभी तो आपने घर परिवार जनों को ही हम प्रयास करते कि भक्त बन जाए, है कि नहीं? भक्त बन जाए, माला जप करे, मंगला आरती आए, कम से कम दीक्षा लेने की अवस्था हो जाए उसकी, प्रयास कर करके थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता वहां पर। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रभुपाद जी ने जो मार्ग बताए हैं, इसमें इंद्रिय भोग की, इंद्रिय तृप्ति की कुछ भी रास्ता नहीं है, निवृत्त मार्ग है। संसार रूपी, इस भवाटवी रूपी जो संसार रूपी जंगल से कैसे छुटकारा पाए, वह मार्ग है, और वह मार्ग सुगम नहीं होता है, कठिनाई होती है। जिस तरह से समुद्र मंथन जब होने जा रहा था, तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या निकला, समुद्र से विष निकला, निकला कि नहीं निकला? अमृत नहीं निकला, अमृत तो अंतिम में जाकर के निकला। इतने परेशान हो गए, विष निकलते हाहाकार मच गया। हाँ, जब जब मुंह की तरफ कौन पकड़े हुए थे? असुर लोग मंथन के द्वारा, वो भी जले हुए जा रहे थे वहां पे। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति के जब मार्ग में हम आते हैं, तो हमारे जीवन में भी पहले विष समान लगता है। विष समान क्या है? सुबह उठना, नहाना धोना, अभी तो गर्मी में तो ठीक है, सर्दी में जब ठंडे पानी पड़ती है, सर्दी में वृंदावन की सर्दी तो बहुत तेज है, आपको अनुभव होगा ही। और गीजर में नहाने वाले को तो अनुभव नहीं होगा, जो ठंडे पानी से स्नान करने वाले को आपको अनुभव हो सकता है कितना ठंडा होता है यहाँ पे, है ना। ऐसे करना बहुत कठिन होता है शुरू शुरू में, अर्थात उसको लगता है। कई लोग तो दो चार दिन आने के बाद भाग जाते हैं आश्रम वाश्रम छोड़ करके, क्योंकि खाना पीना इतना कठिन है, न प्याज खाते न चाय पीते न कुछ करते हैं। कुछ समय के लिए तो आते हैं, उसके बाद में भाग जाते, अरे बेकार है, ऊपर से बोल देते बेकार है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उदाहरण देते थे, एक मधु हनी को एक डब्बे में बंद करके रख दो और उसमें कोई मधु या दूसरा कोई भी जीव जाकर के उस रस को पाने के प्रयास करे तो मिल सकता है क्या? उस बोतल के बाहर बिना ढक्कन खोले वह 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 करते रहो, कितना भी प्रयास करो, उस ढक्कन तो खोला नहीं। और बाद में वो सोचता है, वो जीव सोचता है कि ये तो बेकार है, बंदर जैसा है, जब अंगूर नहीं मिलता तो खट्टा है। वास्तव में उसको करना क्या चाहिए? ढक्कन खोलना चाहिए। वास्तव में मधु जो होते हैं बहुत रस होता है, बहुत अच्छा स्वाद होता है उसका। जब कृष्ण भावना भावित में भी कई कई लोग आते हैं, उसके भगवान के नाम में रुचि तो होता नहीं है, इतने आकांक्षाएं, इतना कामना होता है। ऐसे तो नहीं कि माला जप लिया और भगवत प्राप्ति है ना, आंख में से आंसू आने लगे, होता नहीं है। शुरू शुरू में कठिन होता है, जप करते समय हमें सर्परूप निद्रा भी बार बार ऐसे ऐसे भी होते हैं। भक्त को साथ में जप करते हैं तो हमें जगा देते हैं, है कि नहीं, कितना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन ये विषय पुरुष लोग कुछ समय आते ही भाग जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। और वो क्या करते हैं फिर? बानरान उपेति ही, बानर स्वभाव वाले, शूद्र स्वभाव वाले ऐसे लोगों से जाकर के संगति कर बैठते हैं। भक्तों की संगति क्या होता है? उस पर छूट जाती है। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, हम सुनते हैं प्राय, ये तो पहले इस्कॉन में आया करता था, प्रूपा जैसे जुड़ा हुआ था, लेकिन अब भक्त नहीं है उसको, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति यहाँ से नहीं मिली, विषय भोग यहाँ से नहीं मिला उसको। और यहाँ जो प्रूपा जी ने जो नियम बताए हैं, जो भजन की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से कैसे भजन करना चाहिए, कैसे भगवान के धाम में जा सकते, उसके नियम पालन नहीं कर पाया, असमर्थ हुआ, तो उसका विपरीत ही बोल देता है, तो हम अरे बेकार है वो, कुछ नहीं होता है, ऐसे बोल करके परम मार्ग से वो विच्युत हो जाता है। और कैसे लोगों की संगति करता है? ढोंगी लोगों की, शूद्र स्वभाव वाले लोगों की वो संगति जा करके करता है। और वो लोग क्या बोलते हैं? अरे खाओ पियो मस्त रहो, परिवार में रहो, हाँ मैंने 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 में कुछ दान देते रहो, बस आपका कल्याण हो जाए। भाई कोई नियम नियम पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, खान पान सब खाओ, कुछ भी खा सकते खाओ, कुछ भी करो, ऐसे लोगों की। और ऐसी बात उसको क्या लगता है? अच्छा भी लगता है, हाँ संस्था तो ऐसा होना चाहिए भाई, कुछ भी करो, देखो महाराज कितने दयालु हैं, कुछ भी खाओ कैसे भी करो रहो। तो ऐसे विषयों के, विषयी व्यक्ति के प्रति क्या होता है? आकृष्ट हो जाता है, शूद्र स्वभाव वाले लोगों के संपर्क में आ जाता है और उसके भक्ति मार्ग छूट जाती है। यही है भवाटवी। और उसके जब विषय लोगों के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तद जाति रास है ना, शूद्र इत्यादि जो इनके रास क्या होता है, उनके स्वभाव क्या होता है कि वह, यहाँ पे बानर बंदर की उदाहरण इसीलिए दिया गया कि बंदर, बंदर की एक से अधिक पत्नियों से वो संभोग करता है। तो मनुष्य में भी जब काम शक्ति इतना उत्तेजित होता है तो एक पत्नी से वो संतुष्ट नहीं रहता है, तो अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए अलग 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 जा करके सारा झमेला बना देता वो, और संतुष्ट होता है? नहीं होता, इससे कोई संतुष्ट नहीं मिलता वास्तव में उसको दुख ही दुख मिलता है प्रत्येक क्षण। और क्या होता है इसमें कि जब वह इंद्रिय भोग, अब तो परिवार में चला गया, स्त्री पुरुष आपने बच्चों में इत्यादि में आसक्त हो गया, अब उसको ये लगने लगता है कि संसार में माया से वो तो मोहग्रस्त हो करके उसको यही लगता है कि मेरा जीवन यही है। जब थोड़ी सी मैथुन सुख उसको प्राप्त होता है तो उसको ही परम सुख मानने लगता है वह। क्यों? क्योंकि उसके मन में इतनी कामना है, इतना कामना, इतने विषय है। और पहली थी बात तो वो क्या है कि विषय पुरुषों से ही संगति करता है। यहां पर इस जर भड़त की कथा में आप लोग सुनते आ रहे हैं, इसमें एक ही प्रभाव है। जर भरत जी वास्तव में अपने राजपाट को छोड़ कर करके, घर को नहीं, पूरी राज सिंहासन को छोड़ कर करके वन में वो भजन करने के लिए गए। एक ही गलती हुई उनसे, क्या हुआ? हिरण के संग मृग के संग कर लिए उन्होंने, संगति का दुष्परिणाम हुआ। देखो भजन कर रहे थे, बढ़िया से भजन कर रहे थे, बहुत आनंद हो रहा था उनको, घर परिवार छोड़ करके भजन कर रहे थे, फल्गु वैराग्य नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में उनको समझ में आ गया था कि संसार क्या है, पूरे छोड़ करके भजन करने चले गए थे। और वो मृग बच्चा को बचाना भी उनकी कोई बुरी बात नहीं थी, स्वाभाविक है, साधु लोग दया करते हैं, बचा दिया, लेकिन उनमें आसक्त हो गए जा करके, उसकी संगति कर करके। दूसरे योनि उनको क्या मिला? मृग योनि में चले गए, हरिण का योनि मिल गया, लेकिन भगवान के असीम कृपा था, उस योनि में भी, पशु योनि में भी वो भगवान के स्मरण करते थे। उनको यह सब बात मालूम था कि मैं कैसे पशु योनि में आ गया, कौन सी कारण है, किस कारण से मैं इसमें आ गया। इसीलिए अलग वो जो है दूसरे हिरणों से अलग रहते थे, जितना आवश्यकता उतना खाते थे और अलग एकांत में प्रभु की स्मरण करते थे। और तीसरा योनि उनको क्या प्राप्त हुआ? ब्राह्मण परिवार में, उत्तम परिवार में उनका जन्म हुआ। वहां से फिर भगवान की भजन करने के लिए बहुत सरल होता है ब्राह्मण परिवार वाले। तब जा करके उनको पता था कि ये संसार की माया कैसी है, तभी भी भगवत स्मरण थी, तभी तो एकदम मूड जैसे रहते थे, कुछ भी बोलो, कोई प्रतिकार करते ही नहीं थे कुछ भी। यहां तक कि उनको बलि के लिए ले गया, कुछ भी नहीं बोले। अब जब आप कथा सुन रहे थे रहुगण राजा की, जब कुछ पालकी उठाने वाले कमी हो गई तो वहां पर भी उनको बोला गया, फिर भी नहीं बोले। बोल सकते थे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं जनेऊ धारण किया हुआ हूं, मैं क्षत्रियों को कैसे ढो सकता हूं, ऐसे कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप सारे काम कर लिए। अर्थात इसमें दो सीख है, एक तो संगति, बुरी संग की कैसे प्रभाव पड़ती है। कभी कभार हम भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों की संगति मिले केवल वैष्णव निंदा करता हो दिन रात, तब हमारी भक्ति लता तो नष्ट हो जाती है, पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है उस समय। किसी किसी के स्वभाव होता है किसी का कमी निकालना, अरे ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, वो उसने ये किया, उस फलाने ने ये किया। अगर ऐसे निंदित भक्त के यदि आप संगति में आ गए तो आपकी जितने भी भक्ति लता, कितने साल से आप प्रयास कर रहे जप करने की, भक्ति करने की, एक सेकंड में पूरा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है ये वैष्णव अपराध। और दूसरा संगति जो केवल कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण विषय, कृष्ण की कथा, कृष्ण के भगवान और भक्त के विषय में छोड़ करके और ग्राम्य वार्तालाप जो करता है, ऐसे लोगों की संगति करे तो वो भी नष्ट हो जाता है, भले हम भक्त क्यों ना हो। मैं इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं कि जड़ भरत भी कोई कम नहीं थे। जिस तरह से यहाँ हम जानते हैं बहुत सारे भक्त लोग यहाँ अपना घर परिवार छोड़ करके भगवान की भक्ति करने तो आए हैं यहाँ पे, कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि कुसंगति प्राप्त हो जाता है कि जो विशेष कर करके भक्तों की निंदा करते हैं, विशेष कर करके जो भक्त शुद्ध भक्त है उनकी निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों की यदि संपर्क में आ जाते तो हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है, दिखाई नहीं देता बाहरी रूप में। और जो विषय काम कामिन है, जो विषय पुरुष है, केवल विषय को ही बात करता है, ऐसे लोगों से सावधान रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारी प्रगति को रोकने वाले होते हैं। जिस मार्ग में हमें पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहां पर कहने के लिए तो बहुत है। आगे जाकर के जब इस अध्याय के पूरे भावाटवी के वो वर्णन भी करेंगे, वास्तव में वो कह रहे कि सिंहशाल इत्यादि क्या 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 है, आगे अध्याय में आप सुनेंगे। तो इसी अध्याय में जब जड़ भरत जी उनको उपदेश दे रहे थे भावाटवी के बारे में, उसके बाद में रहुगण को बहुत आनंद आता है। वास्तव में महाराज रहुगण वो कहीं घूमने नहीं गए थे, परम सिद्धि कपिल मुनि के दर्शन के लिए गए थे, कपिल मुनि से कुछ चर्चा के लिए, अपनी विषय में चर्चा, भगवत संबंधी चर्चा के लिए जा रहे थे। रास्ते में कौन मिले? जड़ भरत जी मिले और उनके पूरे के पूरे जो भी उनकी शंका थी उनके समाधान कर दिए। तो कहती कि अहो निर्जन्म खिल जन्म शोभनम। महाराज रहुगण कहते हैं अहो कितना आश्चर्य की बात है, ये जो नरी जन्म मनुष्य जन्म जो है ना, अखिल जन्म शोभनम, सभी जन्म कितने 84 लाख योनि हैं, इस 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म जो है सबसे श्रेष्ठ है। क्यों क्यों श्रेष्ठ है मनुष्य योनि? कोई तर्क कर सकता है कि नहीं नहीं, हमसे श्रेष्ठ तो देव योनि हो सकता है, देवताओं के पास हमसे ज्यादा अधिक भोग कर सकते हैं, हमसे अधिक उनकी आयु है कि नहीं? हमारे जैसे खाना हमेशा नहीं पड़ता है, वो तो अमृत पान करते हैं, अप्सरा आदि से भोग करते रहते हैं, कितनी लंबी आयु है। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, मनुष्य योनि से सबसे उत्तम योनि तो देव योनि होना चाहिए। फिर कहते हैं नहीं, किम जन्म वीर त्वयस परे अमुष्मिन। देवता योनि में, देव योनि में यदि हमारा जन्म हुआ तो उस देव योनि से क्या लाभ है? देवताओं के हिसाब से हम मान लीजिए 100 साल भी जी ले तो उस 100 साल में क्या लाभ है, जबकि 100 साल देव योनि बहुत होता है, हमारे तो गिनती नहीं है, उसमें कैलकुलेटर के अंदर में नहीं आएगा। फिर देवता लोग क्या करते हैं? भोग तो करते हैं, भजन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, भोग योनि है, अच्छे कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग इत्यादि जाते हैं। फिर कहते नयत ऋषि केश यश कुल कृतात्मनाम महात्मनाम वह प्रचुर समागम। फिर कहते हैं कि जिसमें जहां पर भगवान श्री ऋषिकेश के पवित्र यश वाले शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं की संगति यदि प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे योनि से देवताओं की योनि में भी क्या लाभ? अगर मान लीजिए मनुष्य को यदि सबसे बड़ी भगवान की कृपा क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा क्या है भगवान कृष्ण का, बताइए, कोई बता सकते हैं? हमारे लिए, हम मनुष्य तो है, हमारे लिए विशेष करके कर जो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ी कृपा क्या है, सब पर है, वह क्या है? हाँ, भक्तों का संग, बस। उसके ऊपर भी प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का संग मिलना, ये नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी चले गए। जब भी हम प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा मैं पुस्तक के रूप में मैं स्वयं यहां पर विद्यमान हूं। अर्थात जिस समय आप प्रभुपाद जी की किताब उठाएंगे पढ़ेंगे तो आप साक्षात सबसे बड़े शुद्ध वैष्णव के आप साथ क्या कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। बस जीव का एक ही चीज से कल्याण होता है, वह है शुद्ध भक्त की यदि संग मिल जाए किसी भी क्षण, लव मात्र थोड़ा सा भी मिल जाए, बस ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उसका क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। यही है इस पूरी कथा में भी यही कहा गया। महाराज रहुगण को भी बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन जड़ भरत जी जैसे शुद्ध महात्माओं का क्या मिला, संग मिला। हम पूरी भागवत में जितने भी आप कथा सुनते हैं, कितने राजा कितने रानियों के साथ संभोग करते थे, हजार हजार या रानियां हैं, फिर भी कभी कभी उनको भगवत कृपा से नारद मुनि जैसे या चार कुमार जैसे बड़े बड़े संतों की जब उनकी कृपा हो जाता है, संगति हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो महात्मा हो जाते हैं, भगवान के परम भक्त बन जाते हैं और संसार को पूरी छोड़ करके भगवान के भक्ति में लग जाते हैं। यही मनुष्य का लक्ष्य है। कभी कभी हम पूरे संसार को छोड़ करके भगवत भक्ति में आते हैं, हमारा भी जड़ भरत जैसे ही हो सकता है, कहीं ना कहीं आसक्ति हो, है ना। आसक्ति वैष्णव में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। शुद्ध भक्त में आप आसक्ति कर सकते हैं, प्रभुपाद जी में आसक्ति करिए, और जो शुद्ध प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, गुरु महाराज है, उन पे आप आसक्ति जताइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संसार में जब आसक्ति होकर के मरता है, तब तो आप देख ही रहे ना, कथा सुन ही रहे। पहले राजा थे भरत महाराज, दूसरे योनि तुरंत क्या मिला, राजा से क्या बन गए, वो पशु योनि में तुरंत चले गए। लेकिन भगवत कृपा से तीसरे योनि फिर ब्राह्मण योनि में आ गए वो। और श्रीमद् भगवत गीता में भी एक बहुत अच्छे श्लोक श्रीमद् भगवान बताते हैं अर्जुन को, 15 अध्याय के 5वां श्लोक है ये। वास्तव में गरुड़ पुराण में भी बताया गया, एक ही श्लोक है। निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अभ्ययं तद्। मूढ़ा अपि पदम परम अभ्ययं तद् गच्छन्ति। कैसे भी मूढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, वो भी भगवान के धाम जा सकता है। कब जाएगा? निर्माण मोहा, जो झूठी प्रतिष्ठा से रहित हो जाए। प्रतिष्ठा क्या है? झूठा है। जब हमें कोई रास्ते में मिलते हैं, हरे कृष्ण प्रभु, अगर रोज करता है, अगर एक दिन नहीं करेगा तो क्या लगेगा, अरे इसने आज मुझे प्रणाम नहीं किया, ऐसे क्या हो गया, मुझ में क्या कमी, आपने आप ही सोचने लगेगा फालतू में, और टेंशन में रहेगा, शोक करता रहेगा, इसने मुझे आज क्यों नहीं प्रणाम किया, क्यों दंडवत नहीं किया। इसको क्या, झूठी प्रतिष्ठा। झूठी इसीलिए भी है कि शरीर में ही प्रतिष्ठा तो शरीर के कारण ही होता है ना, है कि नहीं। हम प्रतिष्ठा तो शरीर को चाहिए, आत्मा को कोई प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा कुछ कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए झूठी प्रतिष्ठा से रहित होना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, हाँ दूसरे नंबर में कुसंग से बचना चाहिए। संग दोषा एक ही है, भगवान के धाम जाने का एक परम सरल उपाय है कि सत्संग करे, शुद्ध भक्त की संग करे, प्रभुपाद जी का किताब पढ़े। इससे बड़े शुद्ध संगत को हो ही नहीं सकता है, भक्तों की कथा सुने। इसीलिए कहते जीत संग दोष, संग से जो दोष उत्पन्न होते ऐसे को जीतना चाहिए, अर्थात कुसंग से रहित होना चाहिए। अध्यात्म नित्या, फिर शाश्वत तत्व को समझ, जो शाश्वत तत्व को समझता है, मैं कौन हूँ, इस संसार में मैं किस लिए आया हूँ, मेरा जन्म बार बार क्यों हो रहा है, मुझे दुख क्यों प्राप्त हो रहा है, 3 प्रकार के क्लेश मुझे क्यों सताता है, क्यों मुझे जो है बूढ़ा होना पड़ता है, भूख बार बार क्यों लगती है, इत्यादि इसको समझना चाहिए। और जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है वही भगवान के धाम जा सकता है। ध्यान रखना, जिसके मन में कामना हो भगवान के धाम नहीं जा सकता है, कामना रहित होना चाहिए। विनिवृत्त कामा, निवृत्त कामा, एक दो मार्ग है संसार में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति मार्ग कहते गृहस्थ आश्रम को, निवृत्ति मार्ग कहते सन्यासियों को या जो ब्रह्मचारियों को। हाँ, इसमें कहते कामना, विनिवृत्त काम, कामना मुक्त होना चाहिए। कामना मुक्त कब होते हैं? जब हम भगवान के भक्तों के साथ में जब हम कीर्तन करते हैं, जब करते हैं भक्तों के संगति में, हम जब रह करके अपने को कृष्ण भावना में प्रयास करते हैं, तब जाकर के उसकी पूरी कामना संतुष्ट होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर आगे कहते गच्छन्त मूढ़ा पदम अभ्यंत, तब जाकर के परम धाम भगवान के धाम में वो प्रवेश कर सकता है। इसमें भी एक चीज होना जरूरी है, मायावाद में ये सब गुण आ सकता है, उन पे क्रोध नहीं है, द्वेष मुक्त है कि नहीं, कामनाओं से मुक्त है, फिर भी कृष्ण भक्त नहीं है, उनको वापस आना पड़ता है। ध्यान रखे, ये सब चीज होने के बाद भी यदि कृष्ण भक्त नहीं है तो फिर भी पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, फिर से माँ के गर्भ में वापस आना पड़ता है। इसीलिए ये सारे तो गुण है, और उससे बड़ी बात यह है कि सतत हमेशा भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के गुण चिंतन में लगे रहना चाहिए। जीव का परम कल्याण इसी में ही है, और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, समवेद भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।